पूज्य भाई श्री शशिभाई द्वारा देवलाली में थयेल तत्व चर्चा सड़ंग नंबर 81।
श्री समय सारा आदि शास्त्र में अनेक स्थल में वेद ज्ञान का उपदेश दिया है, परंतु अवलोकन करने का उपदेश नहीं दिया है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? हमारी चर्चा वो चल रही है, इसमें वेद ज्ञान के पहले का स्टेज अवलोकन का होता है। अवलोकन का पहले स्वरूप प्राप्ति की अवगाढ़ भावना का स्टेज होता है, उसके पहले पूर्णता का लक्ष्य का स्टेज होता है। ये जो चर्चा अपनी चल रही है, तो उसी के सामने प्रश्न उठाया गया है कि समयसार में ये सब बातें क्यों नहीं है, वेद ज्ञान की बात क्यों है और आगे वाली बात क्यों नहीं है, ऐसा ही प्रश्न उठाया है। इसका समाधान अवलोकन है। यह भेद ज्ञान पहले की भूमिका में उत्पन्न होता है। ऐसी भूमिका संपन्न मुमुक्षु को, जिसको अवलोकन चल गया हो या चल रहा हो, ऐसी भूमिका संपन्न मुमुक्षु को स्वानुभूति होने के लिए वेद ज्ञान का उपदेश आचार्य श्री ने किया है। ऐसी उच्च कोटि की मुमुक्षुता की भूमिका में आया हुआ जीव को वेद ज्ञान का उपदेश प्राप्त होते ही उसके फल स्वरूप स्वानुभव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उस भूमिका में जो न आया हो, वो वेद ज्ञान का उपदेश तो पढ़ेगा, सुनेगा, लेकिन सम्यक दर्शन उसको होगा नहीं, क्योंकि वो वेद ज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, वेद ज्ञान करने की इसकी योग्यता नहीं होती है। इसलिए वो पढ़ेगा, सुनेगा, लेकिन उसको फल मिलेगा नहीं। परंतु सामान्य मुमुक्षु कि जो वेद ज्ञान का प्रयोगात्मक अभ्यास करने को सक्षम नहीं है, उसे अपनी भूमिका का उपदेश नहीं होने से उसको स्वानुभव की प्राप्ति भी नहीं होती है और नहीं हो रही है। वो भी दिखने में आता है कि हो नहीं रही है। समयसार तो पढ़ते हैं, वेद ज्ञान का उपदेश तो पढ़ना सुनना होता है। गुरुदेव जैसे समर्थ महापुरुष ने यह सुनाया समयसार, फिर भी इसका फल क्यों नहीं आया? इसे नहीं आने का कारण है कि आगे की तो कोई परिस्थिति ही नहीं थी कि जिस कारण से वो वेद ज्ञान कर सके। समझना एक बात है, वेद ज्ञान करना दूसरी बात होती है।
तो ज्ञानी का ख्याल में ये फैक्टर नहीं रहता
है? नहीं, उसको ख्याल में है, लेकिन सभा में वो तो समष्टिगत उपदेश देते थे, तो उसमें तो विभिन्न योग्यता के जीव होते हैं, तो किसी उपदेश तो किसी एक योग्यता वाले का चलेगा, या सामने जो शास्त्र है वही चलेगा। समय सार पढ़ेंगे तो समय सार की बात चलेगी, प्रवचन सार चलेंगे तो प्रवचन सार की बात चलेगी, तो वो तो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, और बहुत सी बातें तो अंदर आती ही है, योग्यता की भी आती है, दूसरी भी आती है, तो जिसको अपना प्रयोजन पर दृष्टि होती है वो उठा लेता है, और जिसको प्रयोजन का दृष्टिकोण नहीं है वो ऊपर से जाता है। बात तो एक घंटे में बहुत सी आती है। अनादि का जो अप्रतिबुद्ध है, अप्रतिबुद्ध मैंने अज्ञानी, पागल नहीं, अप्रतिबुद्ध मैंने अज्ञानी, तो मुमुक्षु तो जहां तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ वहां तक अज्ञानी ही है। उपदेश तो अज्ञानी को ही देते हैं, ज्ञानी का उपदेश नहीं, समयसार अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, लेकिन अज्ञानी के स्तर तो अलग अलग है, एक स्तर के अज्ञानी तो सब है नहीं। तो प्रश्न वो उठाया गया कि भेद ज्ञान की बात की है तो जो भेद ज्ञान करने योग्य था मुमुक्षु, उसके लिए समयसार बनाया। आचार्य महाराज ने कैसे अज्ञानी को लक्ष्य में रखा है कि जो अवलोकन के बाद भेद ज्ञान करने लायक हुआ है उसको लक्ष्य में रह करके वो बात किया है, ये कहने का अभिप्राय है। अगर इस भूमिका वाला मुमुक्षु नहीं है तो वो सुनेगा पढ़ेगा, लेकिन उसको प्राप्ति तो नहीं होगी और हो नहीं रही है, वो भी प्रत्यक्ष दिखने में तो आता ही है, क्योंकि वो भेद ज्ञान कर सकने के योग्य नहीं है। इसलिए श्री समयसार गाथा 17-18 में मोक्षार्थी जीव प्रथम आत्मा की पहचान करता है ऐसा विधान है। आत्मा को कौन पहले पहचानता है? जैसे राजा को पहचानता है ऐसे जो मोक्षार्थी होता है। तो मोक्षार्थी की भूमिका की बात तो ले लिया, वहां वो बात तो संकेत तो आ ही जाता है कि वेद ज्ञान कौन करेगा, कि जो मोक्षार्थी होगा वो, या जिसको पूर्णता का लक्ष्य होगा वो। तो वो बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, मोक्ष कामेण पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और भेद ज्ञान की बात हमको अच्छी लगती है। तो क्या अच्छी लगती है इससे काम हो जाएगा? वो तो संतुष्ट होने की बात होगी कि वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर, तुम्हारा प्रयोजन कहाँ है, तुम कहाँ खड़े हो, वो बात है उसमें।
वो कंडीशन है वो फुलफिल करना पड़ेगा, कंडीशन है वो फुलफिल करना चाहिए।
हाँ वो तो बात तो वैसे योग्यता बिना तो कोई ज्ञान प्राप्ति होती नहीं, तो योग्यता में तो आना ही चाहिए। हमारी भूमिका में दूसरा और प्रश्न है कि हमारी भूमिका में श्री समयसार आदि महान शास्त्रों पढ़ने से क्या लाभ हो या क्या नुकसान हो, और ऐसा संभाव्य नुकसान से किस तरह से बचा जा सके, बच सकते हैं, ऐसा एक प्रश्न उठाया है। कि वर्तमान में मुमुक्षु भूमिका प्राय जगन्य स्तर के देखने में आती है। अब जो मुमुक्षु का समूह दिखने में आते हैं वो प्राय जगन्य स्थल के मुमुक्षु है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, तीन लेवे तो जगन्य स्तर की योग्यता वाले करीब करीब देखने में आते हैं। ऐसे मुमुक्षु को मुख्य रूप से जिसमें अपनी भूमिका के योग्य उपदेश हो ऐसे ग्रंथ का वांचन और ऐसे स्तर की चर्चा विचारणा होती हो, ऐसे अन्य मुमुक्षुओं का सत्संग करना योग्य है। उनको क्या करना चाहिए? वो समयसार लेकर बैठ जाएगा तो क्या अनुभव हो जाएगा? क्या होने वाला तो नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए कि अपनी भूमिका का जो ग्रंथ हो उनका स्वाध्याय करें, या अपनी भूमिका की चर्चा चलती हो ऐसे अन्य मुमुक्षु के साथ सत्संग करें, नहीं तो अनधिकारी दशा में महान शास्त्र पढ़ते पढ़ते शास्त्र ही शस्त्र रूप हो जाता है। अर्थात अपनी कल्पना से शास्त्र का अर्थघटन जीव करता है तो उससे वो उन्मार्ग में चढ़ जाता है और दर्शन मौका वृद्धिगत कर लेता है। इसलिए इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए आत्मार्थी होकर के यथार्थ सत्संग की उपासना करने, यही हितावह है। और एक प्रश्न है, एक मिनट, रीडिंग में वो बात नहीं है, रीडिंग में ऐसा लिखा है कि अब इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत हुआ यह आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, ऐसा कहते हुए आचार्य इस कथन का संक्षेप करते हैं। तो वो बात हेडिंग में नहीं लिया है, अंदर में वो बात लिया है कि जो अप्रतिबुद्ध है उनको ये सुनाते हैं। हाँ, वो अंदर में है। जो अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तपणा के लिए अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, उसको विरक्त गुरु से निरंतर समझाने आते हैं। जो कोई प्रकार समझे, समझ करके सावधान हो करके, अब क्या है कि कोई कैसा भी अज्ञानी हो लेकिन वो समझ करके सावधान होता है तो वहीं पात्रता अनकंडीशनल जन्म पा लेती है। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि कोई जीव को कब क्या होगा, ऐसा कोई अंदाज नहीं कर सकते। जैसे कोई बिल्कुल नया है, बिल्कुल एकदम न्यू कमर हो, और उनको बात लगते ही चोट, बात सुनते ही चोट लग जाती है, सीधे उत्कृष्ट पात्र हो सकता है। जो 10-20-25 साल से अभ्यास करने वाला पीछे रहता है और नया आने वाला ऐसे काम कर देता है, तो ऐसी कोई बात हो सकती है। इसलिए नए को वो कहना, उसको वो कहना, वो बात नहीं है। जो उपदेश चलता है उसमें तो क्या है कि आत्मा का जो संचेतन है उसको, मैं ज्ञान मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा करके वो ज्ञानी जो है इसका अपना संचेतन को दिखाता है, तो परिणमन को देख लेता है सावधान हो करके, तो इसका काम हो जाता है।
गुरु की पहचान तो अपने आप आ गई, अनुभवी गुरु के द्वारा।
हाँ,
इसमें बात तो गर्भित हो गई,
हो गई है विरक्त गुरु से निरंतर समझाने में। तो गुरु किसको सुनने को गया है, वो कि ज्ञानी गुरु को, वो बात तो है। वो हर जगह हर बात तो कैसे आ सकती है। हाँ, हर जगह तो जहाँ प्रकरण चलता है वही बात आएगी, सभी अपेक्षा का खुलासा सभी जगह आएंगे तो कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा जा सकता ना। एक प्रश्न है और, उत्कृष्ट मुमुक्षु किसे कहने योग्य है, उनके के क्या लक्षण होता है, स्पष्ट कीजिए। समाधान, जो मात्र सत्पुरुष को चाहता है, अर्थात सत्पुरुष के चरण सानिध्य में त्वरा से आत्मकल्याण करना चाहता है, जिसको पूर्णता का ध्येय होने से जो मोक्षार्थी हुआ है, वह सत्पुरुष को पहचानता है और उसकी भक्ति में लीन होता है, उसे उत्कृष्ट मुमुक्षु कहना योग्य है, वो उत्तम मुमुक्षु कहना योग्य है। ऐसे मुमुक्षु की आत्मकल्याण रूप निज प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाती है, तो इतनी निर्मलता आ जाती है कि उसकी प्रयोजन की दृष्टि बहुत पैनी हो जाती है। इसलिए मात्र प्रयोजनभूत विषय उसके उसके आत्मा में चौंट जाता है, तथा जब सत्संग और सत्शास्त्र में कोई अप्रयोजनभूत विषय सामने आता है तब वह उसे अत्यंत गौण कर देता है। इस प्रकार की मुख्यता गौणता की जो मुख्यता गौणता की अलग अलग करने की जो पद्धति है वो अच्छी तरह होने से, यथार्थ रूप से होने से, वह मुमुक्षु अवश्य आत्मकल्याण को साधता है। उत्कृष्ट मुमुक्षु को निज आत्मा के सिवा अन्य कोई भी इस जगत में से कुछ भी वो चाहता नहीं है। वो आत्मकल्याण के अलावा और स्वरूप के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आत्मकल्याण में उसे कोई प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि दूसरी चीज चाहिए तो वो प्रतिबंध होता है। उक्त प्रकार से भक्तिवश वह जीव को स्वच्छंद और प्रतिबंध का अभाव होने से परिभ्रमण होने का कोई कारण बाकी रहता नहीं है, इसलिए वो तीर जाता है। ये तीन प्रश्न थे आत्मजागृति के दिसंबर। शुरुआत में मुमुक्षु जीव को अपनी दशा में प्रतिबंध और बंधन में अंतर क्या अंतर है वो कैसे समझना चाहिए। मुमुक्षु दशा में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने में जो जो भाव लोक संज्ञा, कुटुंब प्रतिबंध, देहाध्यास इत्यादि, वो उसको प्रतिबंध समझना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध ज्ञान दशा में नहीं होता। लोक की मुख्यता ज्ञानी नहीं करते, कुटुंब परिवार की भी मुख्यता नहीं करते और देह की मुख्यता भी नहीं करते। परंतु ज्ञानी को पूर्व कर्मणों निबंधन होने से उसे भी समाज, कुटुंब और देहादि का बंधन होने योग्य है, लेकिन प्रतिबंध होने योग्य नहीं है। बंधन होता है, बंधन अलग चीज है, प्रतिबंध अलग बात है। मुमुक्षु प्रतिबंध में खड़ा है तो आत्मकल्याण में उसको बाधा आती है। ज्ञानी ने वो प्रतिबंध तोड़ दिया है लेकिन बंधन रहता है थोड़ा बहुत, तो पूर्व प्रारब्ध का वो बंधन है। वो समाज के बीच में रहते हैं, कुटुंब के बीच में रहते हैं और शरीर के साथ में भी जो इसका इलाज वगैरह का कुछ बंधन उसको भी आ पड़ता है। नहीं, प्रतिबंध होता है। नहीं, बंधन का सवाल वहां नहीं पैदा होता है। बंधन तो ज्ञानी को होता है, मुमुक्षु को तो प्रतिबंध होता है तो वो अटका हुआ है। प्रतिबंध छूट जाएगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा। उसमें हाँ, तो वो बंधन भी है। और जहां तक वो मुख्य गुण का सवाल है और मुख्यता नहीं रहती आत्मार्थ की तो प्रतिबंध है, और आत्मार्थ की मुख्यता में वो बात है तो वो बंधन है, प्रतिबंध नहीं है। परिणमन में मुख्य गुण का सवाल उत्पन्न होता है कि मुख्यता किसकी रही। वो छटपट आता है, जैसे सत्संग में नहीं जा सके तो सत्संग के लिए छटपटाएगा, छटपटाहट उसको होगी, उसकी मुख्यता नहीं छूटेगी, क्योंकि उसको बंधन है कि वो नहीं जा सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहता नहीं है ऐसा। वो सत्संग को चाहता है तो इसके लिए वो बंधन है। अगर उसकी मुख्यता छूट गई सत्संग की और देहार्थ की मुख्यता हो गई तो वो प्रतिबंध हो गया। प्रतिबंध कब होता है कि इसकी मुख्यता में अटकाव होता है तो प्रतिबंध है। हाँ, स्वयं मुख्य करता है लोक संज्ञा को, देह को, कुटुंब को मुख्य करके अटकता है तो वो प्रतिबंध है, वो उसको प्रतिबंध कहते हैं। और उसको गौण करके सत्संग आदि करता है तो उसको प्रतिबंध नहीं है, वो प्रतिबंध छोड़ता है, छोड़ता जाता है। तो कभी कभी उसको कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो बंधन में रहना पड़ता है, लेकिन उसको प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी को परवशता से रहना पड़ता हो, रहना चाहता नहीं है, छटपटाता है, तो उसको प्रतिबंध, कुटुंब का प्रतिबंध नहीं है लेकिन बंधन जरूर है। बंधन है, उसको तो जाने का भाव है ना। हाँ, स्टेप नहीं लेता है। क्यों क्यों नहीं लेता है?
अशांति खड़ी हो जाएगी
उसको। तो वो प्रतिबंध
बंधन बहुत खुलासा होना बहुत जरूरी है।
ठीक बात है।
तो क्या होता है, हम लोग प्रतिबंध को खड़ा कर दीजिए।
हाँ, वो भी होता है, ये समझ के भूल हो जाती है। उसका स्पष्टीकरण करना इसलिए जरूरी है कि हम मानते हैं बंधन और होता है हमारा प्रतिबंध। हम कभी मुख्यता कर लेते हैं समाज की, कुटुंब की, शरीर की, और मान लेते हैं कि वो एक हमारा बंधन है, क्या करें। वास्तव में हम उसको गौण करते हैं तो ये हमारा प्रतिबंध है, बंधन नहीं है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी की बात किया। हाँ, हाँ, वही आ जाता है, वो कुटुंब में आ गया ना। दुकान ऑफिस तो कुटुंब के लिए है ना, दुकान ऑफिस तो कुटुंब के लिए है, तो आज आ जाता है। वही वो बात हुई ना, कुटुंब प्रति अपने लिए क्या करता है वो तो, और कुटुंब भी अनुकूलता देता है ना, वरना कुटुंब को कौन गिनता है। कुटुंबे जूते पड़ते हो तो कौन कुटुंब में रहेगा। तो ये तो सब एक ही बात है।
देह की मतलब शरीर की सुविधा वगैरह का भाव है या ना, शरीर की सुविधा वगैरह का, बाह्य सुविधा वगैरह का, ऐसी सुविधा हो, ऐसा वहां पर रहने करने के स्थान हो तो मैं जाऊं, तो ये तो प्रतिबंध भाव ही है।
वो तो प्रतिबंध भाव,
लेकिन अगर शरीर साथ नहीं देता और जाने की उसकी प्रबल इच्छा भी हो तो उसको
बंधन है, प्रतिबंध नहीं है।
भले वो ज्ञानी
है, भले ज्ञानी है तो भी, क्योंकि मुमुक्षु भी प्रतिबंध को छोड़ता तो जाता है, उसको छूटता भी है।
एक प्रश्न है, अगर वो सत्संग उसका गौण होता है तो उसका परिणमन किस प्रकार का चलेगा?
बस
वो और किसी में जुड़ेगा?
नहीं,
रसपूर्वक
नहीं जुड़ेगा, कहां से जुड़ेगा, तो मुख्य हो गया वो। बस
और वो जुड़ गया फिर।
तो वो प्रतिबंध हो गया,
तो वो प्रतिबंध हो गया, बंधन
हो गया।
मतलब उसको अंदर में ऐसा लगेगा कि मेरे को इस देह का ही परित्याग कर देना चाहिए जिस देह में हम सत्संग को साथ सकते हैं।
हाँ, तो उसको वेदना आएगी,
तो वेदना आएगी,
हाँ वेदना आएगी, फिर भी नहीं जा सकता है तो बंधन में है,
तो
वो पूर्व कर्म का बंधन हो गया। लेकिन खुद उसको गौण कर दे और दूसरी जगह रस ले ले तो वो प्रतिबंध हो गया। ऐसा ठीक है, हाँ वो स्पष्टीकरण जरूरी है।
तो बंधन को द्रव्य प्रतिबंध और प्रतिबंध को भाव प्रतिबंध कह सकते
हैं? हाँ,
बंधन को द्रव्य प्रतिबंध और जो प्रतिबंध के बंध कहते हैं उसको भाव प्रतिबंध ऐसा कह सकते हैं?
ठीक है, ले सकते हैं, ठीक बात है।
नहीं समझे, भाव प्रतिबंध का प्रश्न नहीं सकता।
नहीं, वो प्रतिबंध जिसको कहते हैं वो भाव प्रतिबंध है,
भाव प्रतिबंध है।
और जो बंधन है वो तो द्रव्य का बंधन है, भाव में तो बंधन नहीं है। ठीक बात है। नाम अध्यात्म ठवण अध्यात्म द्रव्य अध्यात्म छंडोरे। सुबह जो श्रेयांश नाथ स्वामी का जो आनंद गंजी का स्तवन लिया है, इसका एक पद है, उसका अर्थ क्या होता है? वो भाव अध्यात्म निज गुण साधे तो तेह सु रढ़ मंडोरे। नाम अध्यात्म, मैंने अध्यात्म की बात करे, ठवण अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म, वो तीनों छोड़ने योग्य है। नाम अध्यात्म मैंने खाली नाम, और द्रव्य अध्यात्म वो बाहर में दिखाव अध्यात्म का करे, द्रव्य से कि हम तो त्यागी है, वैसे हैं वैसे हैं। और ठवण अध्यात्म, उसका भी कोई स्थान, ये हमारा अध्यात्म स्थान है, फलाना फलाना क्षेत्र हमारा अध्यात्म स्थान है, अध्यात्म का नाम है, दिखाव भी अध्यात्म का है, वो छानने योग्य है, वो सब आडंबर है। भाव अध्यात्म निज गुण साधे, अपना स्वरूप का आलम्बन लेते हैं वो भाव अध्यात्म है, वो तो निज गुण को प्रकट करता है, साधता है। तो तेह सु रढ़ मंडोरे, तो इसके पीछे लग जाओ, इसके पीछे लग जाओ। रढ़ मंडो एटले रढ़ लेकर के सब पीछे पड़ जाओ, भाव अध्यात्म के पीछे पड़ जाओ, ऐसा कहने का वहां भाव है आनंद गण जी का। નાનીના સર્વ આચરણ વંદનીય છે તે વિસ્તારથી સમજાવશો। નાનીના સર્વ આચરણ એ રીતે વંદનીય છે કે સર્વ પ્રકારના સંયોગ વિયોગમાં સર્વ પ્રકારના દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળભાવમાં નાની અંતરંગથી અસંગ ભાવે રહે છે, એમનું અંતઃકરણ છે એ અસંગપણે રહે છે, એમને એની સ્પર્શના નથી, માટે બહારની પરિસ્થિતિ છે એનાથી એમનું માપ કાઢી શકાય નહીં, ન કાઢી શકાય, અંતઃકરણથી જ માપ કાઢી શકાય અને તે જ યોગ્ય છે અને ન્યાય સંપન્ન છે। તેથી એમના સર્વ આચરણ એમનું સર્વ પરિણમન વંદનીય છે। તો જ્ઞાનીનું પરિણમન જ્ઞાન રૂપે ક્યારે નથી, કઈ અવસ્થામાં નથી, સબ અવસ્થા મેં ઉસકા જો અંતર પરિણમન હૈ વો પવિત્ર હૈ और पवित्र है इसलिए वो वंदन करने योग्य है। वह सत्य सुधा दर्शावेंगे, गुरु गुरु है वो सत्य सुधा दर्शावेंगे, सत्य स्वरूप को जो अमृतमय आत्मा है उसको बताएंगे। चतुरांगुल है, द्रव्य से मिले वो तो बिल्कुल नजदीक है, चार आंगुल भी दूर नहीं है, द्रव्य से मिले, दृष्टि पड़ते ही वो मिल जाता है। रसदेव निरंजन को पीबही, अपने जो आत्मा में आत्मरस भरा है, निरंजन मैंने पवित्र, अंजन मैंने कसाय का जो दाग है उसको अंजन कहते हैं, जिसमें कसाय का दाग नहीं है वो निरंजन है, ऐसा जो अपना आत्मस्वरूप है उसके रस को जो पियो, इसके रस को पियो, कही जोग जुगो सुग जुग सो, तो अपने युगो युग की जो विटंबना है वो चली जाएगी, युगो युग की विटंबना का नाश हो जाएगा। आ बधुं मनने कारणे छे, पत्रांक 333। आ बधुं मनने कारणे छे, आ बधुं, આ બધું એટલે જ્યાં જ્યાં જીવ ઉપાધિ કરે છે એ ખાલી મન એટલે કલ્પનાથી કરે છે ઉપાધિ, મન મનને લઈને મનમાં ઉપાધિ કરે છે ને જીવ, ઉપાધિ તો મનથી કરે છે, તો મન મન સે જો ઉપાધિ કરતે હૈ વો સબ ઉસકી કલ્પના હૈ ઉપાધિ હૈ વો, ઉપાધિ કરને લાયક કોઈ ચીજ નહીં હૈ જગત મેં, उपाधि करने योग्य कोई बात विश्व में है ही नहीं। देखिए सभी अज्ञानी जीव की सामान्य परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि सबको कल की चिंता है, आज तो घर में बिल्कुल मांझी हुई थाली में गरम गरम रोटी मिल रही है, हाँ तो आज तो आज की तो कोई चिंता है नहीं, सबको कल की चिंता है, मैंने वो कितना भी संपन्न हो या नहीं हो कल की चिंता सब करते हैं, क्यों करते हैं, कल्पना करते हैं जो प्रारब्ध है उसी के अनुकूल होएगा, लेकिन मन है वो लगे बिना रहता नहीं है, कल के लिए मन लगा लग जा लगा ही रहता है, समझो ना। ज्ञानी को इससे उल्टा है, ज्ञानी एक क्षण के बाद क्या होगा इसकी चिंता ज्ञानी नहीं करेगा, उल्टी बात है, कल की चिंता ज्ञानी नहीं करता, भविष्य की चिंता ज्ञानी नहीं करता, एक क्षण के पीछे की चिंता ज्ञानी नहीं करेगा, और कोई कितना भी परिस्थिति से संपन्न हो असंपन्न हो उसको कल की चिंता होगी होगी और होगी, वो मन के कारण से है। तो वहां अभिप्राय की भूल है, मन को अभिप्राय भी यहां कह सकते हैं, मन को कल्पना भी कह सकते हैं, तो सब जितने ये सब मैंने जितनी भी उपाधि है, सब मैंने जितनी भी उपाधि है वो सभी उपाधि एक यही कल्पित मन के कारण है, मन की कल्पना के कारण से है या विपरीत अभिप्राय के कारण से है? हाँ, ये बता है क्या परिणति जीव को हो गई? ये सब है ना, वो है लड़का का, वो है लड़की का, वो है फलाने का, वो है संयोग का, इस प्रकार का वो है, कितने लफड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है उतने हैं। क्यों? मन के कारण से, और कुछ नहीं। मैं ऐसा 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 संबंध वाला हूं, बस ये जो मन ने कल्पना कर ली अपने स्वरूप को छोड़ करके, जो भी कल्पना जितने भी किया है, जितने भी आदि व्याधि उपाधि जो कुछ जब कुछ है, वो सिर्फ आत्म स्वरूप को छोड़ करके मन में जो कल्पित कल्पना हो गई है, यही कारण से ये सब हो रहा है। सारा संसार इसके पर चलता है, पूरा संसार का चक्र मन के कारण से है, इस प्रकार के मन के कारण से है। इसलिए मन ने लेने आबधू छे, ये बात समझने के लिए दार्शी भाई की योग्यता पर कितनी शर्त रखी कृपालु देव ने। हाँ, उतनी शर्त मंजूर हो तो हम उत्तर देना चाहते हैं, वरना हमको उत्तर देने का मन नहीं है, ये बात है। इसलिए ऐसी बातें समझने के लिए हमारी भी योग्यता तो होनी चाहिए।
जो आत्मा के अंदर कल की चिंता रूपी चूहा बैठ करके, कल की चिंता रूपी चूहा आत्मा के बैठा अंदर बैठा हुआ, उसको काटता है।
हाँ, उसका उसका कलेजा को काटता है। किसको काटता है? कलेजा को काटता है। कुछ नहीं, प्रारब्ध मेरे मुझे क्या होने वाला है, जो कुछ होएगा कल, आत्मा को क्या होगा वो बता दो। लेकिन ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये अभिप्राय में तो उपाधि आए बिना रहेगी नहीं। मेरा आत्मा मेरा, उसको तो कोई निरालंब निरपेक्ष तत्व को क्या चाहिए। हाँ, जो निरालंब निरपेक्ष है उसको क्या चाहिए?
बल दिया।
बल तो कहां से आएगा, बिना सत्संग तो बल आएगा? वो 569 में कहते हैं कि आत्म विचार होता है लेकिन आत्म बल नहीं होता है। क्यों बल नहीं होता है? बल तो संवेग है, वो पूर्णता के लक्ष्य बिना आता नहीं है। हाँ, इसलिए बल नहीं आता है, सत्संग के आश्रय से बल मिलता है। वहां वो बात लिया है 500, आश्रय करने से लिया है। करते तो सब है लेकिन आश्रय कौन करता है वो अलग बात है। ठीक बात है, अपने आप को निराश्रित समझे तब तो आश्रय करे ना सत्संग का, लेकिन अपने आप को तो निराश्रय समझता नहीं है। हमको तो कोई वांधा नहीं है, लेकिन ये समय मिला है तो सत्संग कर ले, ऐसा तो हम तो संपन्न है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए आश्रय भावना से नहीं करते हैं। आश्रय भाव से करना चाहिए, सत्संग का आश्रय करने से वो बल मिलता है। आयुकनी शरणागति नो भक्ति तो शरणागति है, जो सत्पुरुष के चरण में शरणागति स्वीकार करता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, और जो चिंता करता है इसने शरणागति के गति स्वीकारी नहीं है।
टर्म्स कंडीशन साफ है,
बहुत साफ है। बहुत बार आता है कि उपयोग अंतर्मुख करना, तो परिणति पर्याय भी ऐसा ऐसी होगी। यहाँ ऐसा समझना कि उपयोग फरे वैसे परिणति फिरे, कि परिणति फिरे तो उपयोग फिरे, या पीछे दोनों बच्चे कोई सीधा संबंध नहीं है, नहीं, संबंध तो है दोनों के बीच में, संबंध नहीं ऐसा नहीं है। जो बलवान होता है वो दूसरे को बदलता है, उपयोग जब बदल होता है तो परिणति बदल जाती है, परिणति बलवान होती है तो उपयोग को बदलना पड़ता है। बलवान का जोर चलता है, बलियाना बेभाग, क्या बलियाना बेभाग, वो ज्यादा जो बलवान होता है वो काम कर लेता है। नीग नायक शंकर दोष बताया तेम भावे भावक दोष रागना वेदन में लीधो, मिठाई ना स्वाद में, पण तेमा समझाणु नथी। क्या है कि नीग नायक शंकर दोष है वो मात्र जानने में एकत्व होता है, जानते ही एकत्व होता है, वो नीग नायक शंकर दोष है। और जो वेदन की भूल है, अनुभव की भूल है, वो भावे भावक शंकर दोष है। ऐसे दो प्रकार के शंकर दोष हैं, एक जानकारी की भूल है, जानते ही एकत्व कर लेता है, और एक वेदन की भूल है। पूर्णता के लक्ष्य से धर्म की शुरुआत होती है, इसमें पूर्णता का अर्थ क्या करना। द्रव्य दृष्टि से मैं पूर्ण हूँ, त्रिकाली हूँ, ऐसा लेना, या पीछे पर्याय दृष्टि से मेरे पूर्ण होना है ऐसा लेना, या दूसरा कुछ समझना, ऐसा लक्ष्य करने के लिए कैसी पात्रता चाहिए वो समझाइए। पूर्णता के लक्ष्य से धर्म की शुरुआत नहीं है, मुमुक्षुता की शुरुआत होती है। धर्म तो सम्यक दर्शन से शुरू होता है, तो पूर्णता के लक्ष्य से धर्म की शुरुआत की बात नहीं है, मुमुक्षुता की शुरुआत की बात है। और वो मोक्ष पर्याय की जो पूर्णता है, वो जो ध्येय है, उसके लिए वो बात है। द्रव्य दृष्टि की बात यहाँ नहीं है। ज्ञेय है तो ही ज्ञान ज्ञेयाकार को प्राप्त होता है, ऐसा समझ में आता है। कुर्सी है तो ज्ञान में कुर्सी झलकती है, परंतु कुर्सी के बदले टेबल नहीं दिखता, झलकना आज प्रवचन में आया कि ज्ञेय है, इसलिए ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता, परंतु इस काल में ज्ञान उसाकार होने वाला था। तो बात तो है कि ज्ञान स्वतंत्र परिणमता है, भले ही ज्ञेयाकार रूप परिणमता है, फिर भी ज्ञेय के अधीन होकर के नहीं परिणमता है, उसके स्वतंत्र रूप से परिणमन करने की ऐसी शक्ति और योग्यता है, इसलिए परिणमता है। ऐसे ज्ञान की स्वतंत्रता को देखना है, ज्ञान की परतंत्रता को हमें नहीं देखना चाहिए। सत्पुरुष के सतत सत्संग के लिए पुरुषार्थ का क्या उपाय है? पुरुषार्थ का वो उपाय है कि उसकी जितनी भक्ति होगी उतना सत्संग मिलेगा, भक्ति तीव्र होगी तो सत्संग ज्यादा मिलेगा, भक्ति मंद होगी तो सत्संग कम मिलेगा, या मिलेगा तो इसकी असर आएगी नहीं। तो अत्यंत भक्ति होना जरूरी है, और प्रारब्ध के कारण सत्पुरुष के वियोग काल में उनके द्वारा हुए परिणाम को मुमुक्षु जागृत किस प्रकार रखे। प्रारब्ध का कारण सत्पुरुष के वियोग के काल में उनके हुए द्वारा परिणाम, उसको प्रत्यक्ष मत ले ले, या उसके वियोग की वेदना में आ जाए, वियोग की वेदना में आ जाए और बोध है उसको प्रत्यक्ष मत करें, और वियोग को वेदना में स्वतः ही अगर वो चाहता है तो आ ही जाएगा, वो सत्संग चाहता है तो वेदना में आए बिना रहेगा नहीं, बस वो वेदना निर्मलता लाएगी, और इसका जो बोध प्राप्त हुआ है उसको प्रत्यक्षवत करके उसको अंगीकार करें। प्रतिबंध का सूचक है वो, प्रतिबंध का सूचक प्रारब्ध को मुख्य करता है, जड़ को मुख्य करता है। प्रयास क्या किया, क्यों प्रयास नहीं करता सत्संग में रहने का? प्रयास करे फिर उसकी नहीं चले तो प्रारब्ध कह सकते हैं, लेकिन क्या करे, हमारा प्रारब्ध वैसा है तो अब क्या करे, तो वो प्रतिबंध है, वो प्रारब्ध नहीं है, बंधन नहीं है, लेकिन वो प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध और प्रारब्ध के बंधन में वो वंचना बुद्धि हो जाती है, खुद ही छल ग्रहण कर लेता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो निर्मलता भक्ति से आती है, सत्पुरुष की पहचान के बाद इसके प्रति जो अत्यंत भक्ति होती है वो निर्मलता को ले आती है, उसको प्रेम भक्ति भी कहते हैं और उसको अत्यंत भक्ति भी कहते हैं, उसको ऐक्य भाव भी कहते हैं, पराभक्ति भी कहते हैं, तो और या सर्वार्पण बुद्धि से उनके प्रति का बहुमान भी कहते हैं, जो भी है वो निर्मलता को लाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, कोई आदेश दिया लेकिन हम उसके सामने दूसरी बात उठा लेते हैं तो इसका मतलब कि हमको मान्य नहीं है, तो भक्ति कहाँ रही? और भक्ति के परिणाम होगी, सीधी सादी बात है।
मतलब जितना काउंटर क्वेश्चंस आता है उतना अभक्ति,
उतने अभक्ति, वो उसमें बुद्धि लड़ाते हैं हम, क्या भक्ति नहीं करते लेकिन बुद्धि लड़ाते हैं, तो ये बुद्धि है वो भव भ्रमण कराते, पहचाना वो जान समझ पहचाना कह रहा, वो भक्ति में अंधा हो जाएगा। अंध भक्ति नहीं है, भक्ति में अंधा होना, अंध भक्ति नहीं करना लेकिन भक्ति में अंधा होना, ऐसी बात है। ठीक यहाँ तक रखें।